Jesus kemarin sa tati ka bang ganda. Dari kaat sa lahat sa pagdiis jaga ka rayo. Pagdiis jaga ka rayo hong kisne kaha? Atma ne kaha. कहां से तकदीर जगा कर आई हूं फूल जन्मों का हिसाब किताब है तिरसठ जन्मों में जो पाप और पुण्य किए वो ही रील संगम युग में खुलती है तो आत्मिक स्थिति में स्थित हुई आत्मा जीवात्मा ये गीत गाती है कि मैं तकदीर जगा के आई हूं अर्थात तिरसठ जन्मों में ऐसे कर्म किए हैं कि जब संगम युग में परमात्मा आता है तो तकदीर साथ देती क्योंकि तकदीर सदैव दो प्रकार की होती है एक अच्छी और दूसरी बुरी एक सुख की और दूसरी दुख की तिरसठ जन्मों में जिन्होंने सुख दिया है उनको सुख की तकदीर मिलती है और जिन्होंने दुख दिया है उनको दुख की तकदीर बन जाती है बल परमात्मा आता है परंतु उसके आने पर भी दुखी होते हैं भारत की सुख की तकदीर भी है तो दुख की तकदीर भी है भारत ही सुखधाम था भारत ही दुखधाम मकान नया है तो अच्छी तकदीर और पुराना है तो बुरी तकदीर भारत भी पहले नया था अब पुराना हो गया इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो दुनिया नहीं जानती तुम्हारा ध्यान इन बातों की तरफ खिंचवाया जाता है कि बच्चे तुम कितने तकदीरवान थे देवी देवताएं विश्व के मालिक थे और अभी नहीं अच्छी तकदीर बदल करके अब बुरी हो गई अच्छी तकदीर कैसे और कब होती है ये समझने की बात है समझाने वाला एक ही बाप है बेहद का भारत की ऊंची तकदीर कब थी जब स्वर्ग था और बुरी तकदीर अभी गाते भी हैं पतित पावन आकर हमारी पावन तकदीर बनाओ भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर अभी वो ही भारत पतित है क्योंकि विकारी है तो विकारी और निर्विकारी दोनों होते हैं हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे आप बाप को बुलाते रहते हैं कुंभ के मेले पर भी जरूर गाते होंगे पतित पावन सीताराम पतित पावनी नदी तो नहीं है ना मनुष्यों की जब तकदीर बुरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। अकल ही खराब हो जाती। दुख और सुख का ये खेल है। दुख और सुख देने वाली कौन है? दोनों के चित्र बहुत नामी जानी। कौन से चित्र हैं? दुख देने वाले का चित्र कौन सा है और दुख देने वाले का चित्र कौन सा है? दुख देने वाला है रावण और उसके अपोजिशन में सुख देने वाला है राम। तो सुख के लिए परमात्मा को याद करते हैं, सर्व का सदगति दाता राम, दुख हरता सुख करता। तो इससे सिद्ध है पाप कभी भी दुख नहीं देता। राम बाप को कहा जाता है। वो लोग समझते हैं भगवान ही सुख दुख दोनों देते हैं। कौन लोग? भक्त हैं वो ये समझते हैं कि भगवान सुख दुख दोनों देता है, लेकिन नहीं। राम भगवान सुख ही देता है और रावण दुख देता है। तो देखो पाई पैसे की बात भी कोई समझते नहीं है। अभी तुमको बाप ने पारस बुद्धि बनाया है, बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो ये सृष्टि का चक्र फिरता है। सृष्टि पुरानी होती है तो उसमें दुख होता है। अभी तुमको आंखें मिली है, तुम सबको समझा सकते हो कि जब गाते हो पतित पावन आओ, फिर नदी पर आकर क्यों बैठे हो? नदी का किनारा क्यों पकड़ा हुआ है? ये यज्ञ तप आदि करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं मैं इनसे मिलता ही नहीं, चाहे कितना भी बड़ा यज्ञ करो, कितनी भी तपस्या पत सको, वेद शास्त्र आदि पढ़ो, जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब मैं आकर के सदगति के लिए ज्ञान देता हूँ। तो ज्ञान से ही सदगति होती है। ज्ञान माने जानकारी, समझ। सुख देने वाला कौन है और दुख देने वाला कौन है, दोनों का ज्ञान चाहिए। पहचान चाहिए। और जो सुख देने वाला है उससे योग का भी ज्ञान चाहिए। तो लगाव कैसे लगे, लगन कैसे लगे, क्योंकि पावन बनने के लिए ज्ञान चाहिए। शास्त्र पढ़ने से तो पावन बनने की कोई बात ही नहीं। देवे कहता है भारत जब पावन था तो संपूर्ण निर्विकारी, धनवान भी बहुत है। ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया? किससे बने? क्या शास्त्र पढ़ने से बने? क्या गंगा स्नान करने से बने? ये तो तुम 63 जन्म से करते ही चले आए, फिर भी पुकारते हैं कि पति तो पावन आओ। जब पति से दुनिया का समय पूरा होगा तब ही पति से पावन बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। कब पूरा होगा? पावन दुनिया कितना समय और पति से दुनिया कितना समय? 2,500 वर्ष पावन दुनिया, 2,500 वर्ष पतित दुनिया। तो स्वर्ग की स्थापना कब होगी? 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की बुद्धि में ये कब बैठेगा कि पतित पावन बाप आ गया है? सड़क का उद्घाटन करने के लिए 52 दुनिया तो सतयुग है ना, और पतित दुनिया कलयुग है। ये कोई समझते नहीं है कि पतित पावन एक ही परमात्मा है। अगर ये समझते हो तो बुद्धि भी एक की तरफ जाए। अनेकों के फसाव में लगाव में बुद्धि फंसे ही नहीं। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, और उनका अर्थ भी बात ही समझाती है कि सभी सीताओं का एक ही परमात्मा है। सब सीताएं रावण की जेल में पतित हैं, बंधन में। एक राम बाप परमात्मा ही उनको छुड़ाने वाला है। कैसे भी हैं सब का दाता राम, सदगति दाता राम। दाता क्या ये भी समझते नहीं है? बाप समझाते हैं सब का दाता राम, वो तो निराकारी है ना। सबका सदगति दाता राम तो निराकार ही है, तो सदगति दाता निराकार, और निराकार को कहते हैं अकाल मूर्त। जिसको काल खा नहीं सकता उसको कहते हैं अकाल। तो काल शरीर को खाता है या आत्मा को खाता है? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, तो जरूर काल शरीर को खाता है। तो जिस शरीर को काल खा जाए और दुनिया देखे कि काल खा गया, उसे अकाल मूर्त नहीं कह सकते। जो अकाल मूर्त निराकार परमात्मा है तो जरूर निराकारी स्टेज वाला होगा। शरीर में रहते भी निसंकल्पी स्टेज, तो देखो बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। जब निराकार कहते हैं तो सिर्फ बिंदु समझ लेते हैं। बुद्धि में बैठता ही नहीं है। कि निराकार का मतलब निराकारी स्टेज से, नहीं तो सिर्फ बिंदु स्वर्ग कैसे रचेगा? क्योंकि निराकार तो सब आत्मा है, मनुष्यों से लेकर कीट पशु पक्षी पतंगे सब निराकार ज्योति बिंदु आत्मा है। एक सदगुरु निराकार से सदगति होती है को समझना है। सतयुग में तो सब पारस बुद्धि थे, नाम ही है पारसनाथ पारसपुरी। तुम बच्चे इस समय पारसनाथ बनते हो, आत्मा गोल्डन एज बन जाती। अभी आयरन एज बुद्धि है, गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाती है। बुद्धि का ढब ऐसा बन जाता है कि सुख ही सुख उसे भासता है, सुख नहीं भास सकता। ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा हो जाती है। और आयरन एज बुद्धि दुख उठाती है। मनुष्य दुख के पीछे हैरान होते हैं, पवित्र बनने में देखो कितना हंगामा करते हैं। गाया हुआ भी है, कंसी जरासिंधी दुशासन पूतना सुपनखा, ये सब पास्ट की बातों का गायन है। किस समय का पास्ट? पास्ट में जो संगम युग बीत गया है, उस संगम में ही ब्राह्मणों की दुनिया में कंसी जरासिंधी दुशासन पूतना और सुपन खाते। जरूरी ये सब संगम का ही गायन है। हर बात संगम की गाई जाती है शास्त्रों में, पुराणों में। बाप कहते हैं मैं भी पतितों को पावन एक ही बार बनाने के लिए आता हूँ, सिर्फ संगम युग में। कोई हर युग में नहीं आता हूँ। हाँ, हर युग की शूटिंग का टाइम जरूर होता है, जिसको उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया है, संभवामि योगे युगे, मैं हर युग के अंत में आता हूँ। दूसरा भी तुम जानते हो कि बाबा का धंधा ये है पतितों को पावन बनाना। बाबा का धंधा पतितों को पावन बनाना, ज्ञान सुनाना धंधा नहीं है। ज्ञान भी सिर्फ इसलिए सुनाते हैं कि बुद्धि में ये बैठ जाए कि पतित कौन है और पावन कौन है। एवर प्योर कौन है और एवर इम्प्योर कौन है, ताकि संग का रंग लग सके। एवर प्योर का बाकी कोई ज्ञान सुनाना एम ऑब्जेक्ट नहीं है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? परमात्मा के आने की एम ऑब्जेक्ट क्या है? पतितों को पावन बनाना। बाप रचता है तो जरूर नहीं रचना रचेंगे। रावण तो है पतित बनाने वाला और बाप है पावन बनाने वाला। राशि तो दोनों की एक है, फिर एक पतित बनाने वाला एक पावन बनाने वाला कैसे? राशि तो एक है लेकिन चरित्र एक जैसे नहीं है, तो चित्र भी एक जैसा नहीं है। रावण के चित्र में अनेक सिर दिखाए गए हैं और राम का एक सिर दिखाते हैं। माना एक तरफ है एक मत और दूसरी तरफ है अनेक मत वाला रावण। मत माना बुद्धि, अलग अलग सिर माना अलग अलग प्रकार की बुद्धि, अलग अलग प्रकार की मत देने वाला तो जरूर व्यभिचारी बनाएगा। और बाप है एक मत देने वाला तो जरूर अब व्यभिचारी बनाएगा। अब व्यभिचारी मत और व्यभिचारी मत, अब व्यभिचारी मत से शिवालय बनता है और व्यभिचारी मत पर चलने से वैश्यालय बनता है। तो बाप का यथार्थ नाम है शिव, यथा अर्थ जैसा उसका अर्थ वैसा ही नाम। रावण का भी यथार्थ नाम रावण, रावण का अर्थ होता है रावैते लोकान, लोगों को जो रुलाता है वो है रावण। और शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिवरात्रि मनाते भी रात्रि का अर्थ भी तुम समझते कि अज्ञान रात्रि की बात है। बाप आएंगे तब जब भक्ति अर्थात अज्ञान की रात पूरी हो, सची गुरु की सवेरा होगा। सब बाप आवेंगे। ये हुआ संगम का टाइम। 500 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी बुद्धि में बैठ जाएगा कि बाप आया हुआ है। अब सतगुरु की सवेरा होने वाला है और कलयुग की रात पूरी हो गई। तो अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, अब वापस जाना है। अब नीचे उतरने का टाइम गया। पतित बनने का टाइम गया। कलयुग था, अब फिर चक्कर रिपीट होता। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाए रहा हूं। देवताएं भी मनुष्य ही है ना, और कोई फर्क नहीं। क्या फर्क है? देवताएं पवित्र होते हैं, निर्विकारी होते हैं, और मनुष्य मनुष्य अपवित्र होते हैं और विकारी होते हैं। कोई कहे हम तो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों को भी अलंकार नहीं दिखाई जाते। अलंकार फिर भी संपूर्ण देवताओं को दिखाए जाते, क्योंकि ब्राह्मण जब तक अधूरे हैं तब तक मनुष्य ही कहे जाएंगे। जब ब्राह्मण संपूर्ण बनता है 100% ब्राह्मण माना देवता। तो देवताएं हैं गोरे अर्थात पावन, और अभी के मनुष्य हैं सांवरे अर्थात पतित। माना पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। कोई माई का लाल है नहीं जो कहे कि मैं पावन बन चुका हूं, और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। भारत गोल्डन एज था, अभी आयरन एज। आत्मा में खाद पड़ गई है विकारों की। वो खाद निकलेगी योग अग्नि से, लगन की अगन कही जाती है। तो देह और देह के संबंधों से जो लगाव लगा हुआ है वो विकारी लगाव खत्म तब होगा जबकि एक बाप से लगाव लगे। आगे तो मन मना भव अक्षर पढ़ते थे, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। क्या अर्थ हुआ? मन मना भव, इसका संधि विच्छेद हुआ। मत आधा था, मत मना भव, मत माना मेरे। संधि मिलाने से ताहलंत का ना बन जाता है आधा। मना माना मन में, और भव माना समाज। जैसे सागर में बूंद समा जाती है तो ऐसे ही मेरे मन में समा जाए। मन में क्या है? मन में तो संकल्प होते हैं, अर्थात जो मेरा संकल्प सो तेरा संकल्प। संकल्प मात्र भी कहीं विरोधाभास न हो, वाचा में विरोध और कर्मणा में विरोध, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मन के संकल्पों में भी कोई विरोध न हो, जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प, ये हुआ मन मना में। तो भक्ति मार्ग में तो सिर्फ मन मना भव अक्षर पढ़ते हैं, रटते हैं मन मना भव का मंत्र, अर्थ नहीं जानते। अभी तो परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना है, बुद्धि रूपी हाथ किसके साथ जोड़ना है? परमात्मा के साथ। परंतु उनके रूप का ही किसको पता नहीं कि कौन से परमात्मा के साथ बुद्धि का योग जोड़े। समझ लिया, वो तो बिंदु है, तो बिंदु तो सभी आत्माएं हैं और सबकी आत्माएं एक जैसी ज्योति बिंदु, कोई फर्क नहीं। तो कौन से बिंदु के साथ है लगाव लगाएं? तो जब तक उस बिंदु के साकार स्वरूप जीवात्मा स्वरूप का पता नहीं लगता है तो असली योग नहीं लग सकता। क्योंकि आत्मा बिंदु बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती। कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। जब नाम और रूप दोनों से न्यारा है तो योग किसे लगाएंगे? क्या हवा से योग लगेगा? भगवान उवाच, जब भगवान उवाच करते हैं तो उवाच करने वाले का कोई तो नाम रूप होगा। कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जरूर श्रेष्ठ मन होगा, मन होगा तो मनन चिंतनशील भी होगा, क्योंकि मननाथ मनुष्य कहा जाता है, मनन चिंतन करने के कारण ही मनुष्य कहा जाता है। देवताओं का मनन चिंतन नहीं चलता, इसलिए उनको मनुष्य नहीं कहा जाता। भगवान तो मनुष्य रूप में आता है, तो अब देह का अभिमान छोड़ो, अपन को आत्मा समझो। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं आत्मा स्थान है, प्रकृति के बीच में रहती है। उनको फिर नाम रूप से न्यारा कह देते, जो अकाल मूर्त है, अकाल तत्व निवासी है, वो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता? बाप के लिए कहते हैं ब्रह्म है, अखंड ज्योति है। अब ब्रह्म तो बेअंत हो गया, जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकते। अच्छा, कोई करके अंत भी पाए लेवे, परंतु उससे मुक्ति और जीवन मुक्ति तो नहीं मिलती है। मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ भी तुम बच्चे अच्छी तरह समझते हो। मुक्ति माना दुख दर्द से छुटकारा, और जीवन मुक्ति माना जीवन में रहते हुए, ऐसे नहीं जीवात्मा ही न रहे, आत्मा का जीवन भी रहे और फिर भी दुख दर्दों से मुक्ति हो जाए, ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा हो। ऐसे नहीं कि दुख दर्द आए ही नहीं, स्थिति परिस्थिति समस्याएं आए नहीं, आवे लेकिन आत्मा सुख में महसूस करे, ऐसी स्टेज बनी हुई। दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है, गाते भी हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य शक्ति का बीज रूप, मनुष्य शक्ति का बीज रूप मनुष्य होगा या सिर्फ बिंदु होगा? आम का बीज होगा तो उसका स्वरूप अलग होगा, किसी दूसरे पेड़ पौधे का बीज होगा तो उसका स्वरूप अलग होगा, तो मनुष्यों का बीज कैसा होगा? जरूर मनुष्य रूप ही होगा। कहते हैं सत्य है, चैतन्य है, तो सत्य तो सब कहा जाए जब सत्य बोलने वाला हो। चैतन्य तो सब कहा जाए जबकि बोलने चलने वाला हूँ, जरा थोड़ा ही बोलेगा। तो इससे साबित हुआ कि परमात्मा सिर्फ बिंदु नहीं है, वो परमात्मा परमात्मा पाठधारी भी है। पतितों को पावन बनाने के लिए पाठ भी बजाता है, जैसे पतित मनुष्य पतित ही बनाते हैं। मनुष्य गुरुओं ने सारी दुनिया को पतित बनाया, तो पाठ बजा के बनाया या बिना पाठ बजाए दुनिया पतित बन गई? पाठ बजाया, संग का रंग लगाया, तो परमात्मा तन में आवेंगे, साधारण तन में, और साधारण तन में आवेंगे तो साधारण कर्म करेंगे या असाधारण कर्म करेंगे? जरूर कर्म भी साधारण ही करेंगे, परंतु उन कर्मों का प्रभाव कैसे होगा? तुम समझाते हो जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति माना ज्ञान अंधेरा, ज्ञान है दिन सतयुग त्रेता और भक्ति है द्वापर कलयुग। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है न कि पानी की नदियां। ये किसको समझाना है? पानी को बिलोने से कोई मक्खन नहीं निकलता है, परमात्मा कोई पानी का सागर नहीं है सिर्फ, वो तो ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान का मंथन करने से कोई नई बात निकलेगी? तो अब ये पैगाम सारे भारत को कैसे दे रहे हैं? उसके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियां समझाते रहते हैं। मेला तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का ही गाया हुआ है, बाकी कोई नदियों का मेला वो मेला तो मेला बनाने वाला है, चाहे वो जड़ नदियां हो चाहे चैतन्य नदियां हो। सिर्फ नदियों का मेला पावन नहीं बना सकता, पति तो पावनी नदी वो जिसका ज्ञान सागर से कनेक्शन जुटा हुआ हो। कनेक्शन माना संबंध, क्योंकि परमात्मा तो एक ठहरा ना, और नदियां तो अनेक हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है ये कोई हिसाब नहीं बनता, और नदियां तो सारी दुनिया में है, बाप तो एक व्यापी बन करके आता है, एक ही मुकर्रर रथ में आता है। मुकर्रर का मतलब ही है जो आदि तो अंत, वो एक बाप ही आकर के सबको दुख से छुड़ाते हैं, दुख में सुमिरन सब करते हैं, सुख में कोई सुमिरन नहीं करते हैं। दुख में कितनी रणियां मारते हैं, उनसे पूछो ये कब से करते आए हो, कहते हैं परंपरा से। फिर इतनी रणियां मारने के बावजूद भी कोई पावन तो हुए नहीं, और ही पतित होते थे। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, विष्णु का दिन नहीं कहेंगे। क्योंकि ज्ञान अभी मिलता है, विष्णु तो है सतयुग का देवता, ज्ञान मनुष्यों को मिलता है। और मनुष्य होते हैं विकारी, जो निर्विकारी ब्राह्मण मनुष्य बन जाते हैं वो फिर मनुष्य नहीं तो देवता हो गए, उनको ज्ञान की दरकार नहीं। कपड़ा गंदा होता है उसको ज्यादा ज्ञान जल की जरूरत है, जो कपड़ा गंदा है नहीं उसको उतने ज्ञान की जरूरत जल की जरूरत नहीं है। तो भारत के जो जन्म जन्मांतर के पतित राजाएं हैं, रुद्रमाला के मणके बनते हैं, वो ही बहुत पतित बनते हैं। उनको ही ज्यादा ज्ञान की दरकार पड़ती है, जिससे उनकी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र स्वच्छ बन सके। तो देखो दिन प्रतिदिन पॉइंट से रिफाइंड निकलती रहती है, विजय माला की आत्मा है उतनी पतित नहीं बनती। एक है रुद्रमाला और दूसरी है विजय माला। क्योंकि विजय माला में जो पहले पहले आते हैं वो है जन्म जन्मांतर की भारत की बनने वाली रानियां, भारत के राजाएं ज्यादा पतित बने या रानियां ज्यादा पतित बनी, ज्यादा प्योरिटी की पावर किसने रही? रानियों। हुजूम के हुजूम इकट्ठे होकर के भारत की रानियों ने जौहर कर दिया पवित्रता के लिए, लेकिन अपवित्र नहीं बनी, विभिचारी वैश्या नहीं बनी। ऐसी रानियों को ज्ञान जल की दरकार होगी? ज्यादा ज्ञान जल चाहिए? नहीं, बेसिक नॉलेज मात्र से ही काम चल जाता है। बाकी जो राजाएं हैं वो जन्म जन्मांतर पतित बनते रहे, आपस में टकराते रहे, क्योंकि जहां इम्प्योरिटी होती है वहां पीस और प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। प्योरिटी से यूनिटी बनती है, अपवित्रता से यूनिटी का खंडन होता है, चाहे वो सेंटर की यूनिटी हो, चाहे वो देश की यूनिटी हो, चाहे किसी भी प्रकार के संगठन की यूनिटी हो, वो टूटेगी तब जब इम्प्योरिटी होगी। और जहां प्योरिटी होगी वहां किसी प्रकार का कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही यूनिटी बनेगी। कोई मेला मला खड़ा, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सम्मेलन करने की दरकार नहीं। रानी मक्खी शहद की मक्खियों की रानी कही जाती है। इतना संगठन कैसे बनाती है? ठीक है ना, अपने संगठन के बीच में जैसे बाबा ने बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत में रानियां निकलेंगी जो राजाओं की भी परवाह नहीं करेंगी। जैसे भक्ति मार्ग में राजाएं निकले सन्यासी बनकर, तो उन्होंने रानियों की परवाह नहीं की, वो किस कीमत पर निकले। मनुष्य गुरु रावण की मत पर निकले या भगवान की मत पर निकले? रावण की मत पर निकले। और अब मुरली में बोला है कि रानियां निकलेंगी जो बड़े बड़े राजाओं की भी परवाह नहीं करेंगी। दुनिया में राजाएं कहां? राजाएं हैं? राजाएं तो है नहीं, फिर कौन से राजाओं की तरफ इशारा दिया? बड़े बड़े सेंटर्स चलाए रहे और राजा बने बैठे, अथवा रुद्रमाला में भी विज रूप आत्माओं में भी जो बड़े बड़े ज्ञानी प्रकांड आत्माएं हैं, ऐसों की परवाह नहीं करेंगे। एक शिव का पीछा करेंगे, शिव के पीछे चलेंगे, क्योंकि शिव की शक्ति है और शिव है एवर प्योर। दुनिया कहेगी ये एवर इम्प्योर है, कलंक लगाएगी, कलंक की धर साबित करेगी। जैसे कि बाबा ने बोला है कलंक की धर पिछाड़ी कुत्ते भौंकते रहते हैं, और वो शक्तियां साबित करेंगे कि यही एवर प्योर है, यही परमात्मा है। तो ज्ञान अभी परमात्मा से मिल रहा है। दिन प्रतिदिन पॉइंट से रिफाइन निकलती रहती है। तो अब सेकंड की बात है जीवन मुक्ति लेना, एक सेकंड में जीवन मुक्ति, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? एक सेकंड। तो ये 50-60 वर्ष के खाते में गए है? संपूर्ण बनने के लिए, निश्चय बुद्धि बनने के लिए ब्रह्मा की ही आत्मा सबसे जाति जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, प्रजापिता की नहीं। जो सबसे जाति निश्चय अनिश्चय के जन्म मरण के बेहद के चक्र में आता है, वही जब निश्चय बुद्धि बन जाता है तो सबसे जाति सदगति भी पाता है। तो ब्रह्मा के लिए गाय गायन है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, क्योंकि ब्रह्मा ही सबसे जाति अंधेरे में आता है और ब्रह्मा ही सबसे जाति उजाले में आता है, सोझरे में आता है। सूर्य ग्रहण कह देते हैं, वास्तव में सूर्य को विकारों का ग्रहण नहीं लगता। विकारों की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता। तो कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो पृथ्वी कहो या धरणी कहो या कन्याएं माताएं कहो, उनकी परछाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे ब्रह्मा अंधेरे में आ जाता है। बाकी ज्ञान सूर्य के अंधेरे में आने की बात नहीं है। क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, तो उसकी परछाया पृथ्वी वासियों के ऊपर पड़ती है और उस छाया के नीचे रहने वाले, ब्रह्मा की छत्र छाया के नीचे रहने वाले अंधेरे में आ जाते। तो क्या समझते हैं कि सूर्य पर अंधेरा आ गया, सूर्य को ग्रहण लग गया विकारों का। तो वास्तव में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के छत्र छाया में पलने वाले ही अंधेरे में आते हैं। उन्हीं के प्रभाव से आत्माएं प्रभावित होती हैं और कहती हैं सूर्य पर अंधेरा है, अपवित्रता है। सूर्य पर तो अपवित्रता हो नहीं सकती, अग्नि तो अपवित्रता को भस्म करने वाली है और सूर्य तो आग का गोला है। तो आग के गोले के ऊपर अपवित्रता ठहर कैसे सकती है? तो जीवन मुक्त एक सेकंड की बात है, निश्चय बुद्धि विजयंती, इस बात पर निश्चय। निश्चय और अनिश्चय किस बात पर होता है? पहला पहला तीन बातों पर निश्चय बताया, पाप पर निश्चय, पहली पहली बात। यही निश्चय पहले पहले डोलता है, ये पाप है या नहीं है। दूसरा निश्चय ड्रामा पर निश्चय, और तीसरा निश्चय अपने पार्ट पर निश्चय है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, डायरेक्ट बच्चा लेने वाले और परमात्मा बाप से डायरेक्ट वर्तन लेने वाले हम बच्चा बच्चे हैं या मैं बच्चा हूँ। उन आत्माओं को कोई हिला ही नहीं सकता, लेकिन इन तीनों प्रकार के निश्चय का मूल है पाप का, पाप के ऊपर निश्चय। तो कहते हैं ज्ञान का सागर है, इतना बड़ा सागर कि कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं आएगा। पाप जब समझा कर पूरा करते हैं तो फिर इम्तिहान भी पूरा हो जाता है। पढ़ाई पूरी हो जाती, इम्तिहान भी पूरा हो जाता। शुरू से लेकर तुम कितना सुनते आए, गीता तो बिल्कुल छोटी बना दी। कितनी ज्ञान की बातें हैं और समझाना भी बहुत सहज है। बरोबर सचयुग में एक धर्म था, अभी तो देखो कितने धर्म हैं, कितना हंगामा है, आपस में ही हंगामा हो गया। कहां हंगामा हो गया? हंगामा कहां होता है? जहां अनेकता होती वहां हंगामा होता, और जहां एकता होती है, पवित्रता होती है, यूनिटी होती है, वहां हंगामा हो नहीं सकता। एक धर्म था तो लड़ाई आदि का नाम निशान नहीं, सुख ही सुख था। चक्र का राज बुद्धि में है। बच्चों को समझाया है कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो, तो चक्कर रिपीट होता है। अभी तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन रहे हो योग बल से, तुम अभी आस्तिक बने। आस्तिक माने जो बाप और बाप की रचना को पहचान ले, वो हुआ आस्तिक। और जो न पहचान पाए, माया उस बाप की पहचान में वायलोरा डाल दे, तो हुआ नास्तिक। तुम त्रिकालदर्शी भी बने हो। दुनिया में और कोई भी रचयिता और रचना को नहीं जानते, न रचयिता बाप को जानते। रचयिता शब्द जब आता है क्रिएटर, तो आत्मा क्रिएट की जाती है क्या? आत्मा अनादि है या क्रिएट? आत्मा तो अनादि है, तो जब क्रिएटर कहते हैं उससे साबित है कि वो रचयिता साकार होगा, मनुष्य रूप में होगा। मनुष्यों का बाप जरूर मनुष्य होगा, बीज को ही बाप कहा जाता है, और रचना भी पहली पहली रचना ही आदि रचना है, वो भी जरूर मनुष्य रूप में होगी। तो रचना है ब्रह्मा और रचयिता है देव बाबा, देव बाप नहीं, देव बाबा ग्रैंडफादर। क्योंकि बाप तो वो सिर्फ आत्माओं का है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, दूसरा कोई संबंध नहीं है। दूसरे सब संबंध तब बनते हैं जब शरीर में आते हैं, तो वो ग्रैंडफादर रचयिता। तो दुनिया में कोई भी न रचयिता को जानते हैं और रचना न रचना को जानते हैं। मुख्य बात जानने न जानने की कौन सी आत कहा करके अटकती है, जिससे अनिश्चय पैदा हो जाता है। पाप के पार्ट के ऊपर यह अनिश्चय हो जाता है। जब पाप अपवित्र ठहरा तो उसकी रचना भी अपवित्र ठहरी, तो पाप के प्रति भी श्रद्धा उठ जाती और रचना के प्रति भी श्रद्धा उखड़ जाती। तो रचयिता और रचना माना माता पिता, माता पिता को ही न जाना न माना तो नास्तिक हो। तुम बच्चे ही जानते हो परंतु धारणा करके औरों को नहीं समझाते हैं तो पॉइंट भूल जाती है। बुद्धि में ज्ञान बैठा है इसकी निशानी क्या होगी? जिसकी बुद्धि में बैठेगा वो दूसरों को भी बिठाएगा जरूर, समझेगा तो दूसरों को समझाएगा जरूर। अगर नहीं समझाएगा तो जो समझा है वो भी भूल जाएगा। एक माल बुद्धि में नहीं बैठता है तो दूसरा कैसे बैठेगा? दान देते जाएंगे तो खजाना बढ़ता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहे, किसको कैसे समझाएं? भक्ति की महिमा तब है जब ज्ञान नहीं। जो बच्चे सर्विस पर हैं उनकी बुद्धि में नशा रहता है, क्योंकि बाप की याद और सेवा ये डबल लाख लगा हुआ होगा तो माया की हिम्मत नहीं पड़ेगी हमला करने की, इसलिए बुद्धि में नशा रहेगा। नंबर वार तो है महारथी वो जो दूसरों को आप समान बनाते हैं, नालिश धारण करते हैं, पदवी उनको मिलता है। ये मेहनत सारी गुप्त है, तुम बाप के बने हो तो समझते हो। बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। जरूर शब्द क्यों लगाया? ये क्योरिटी का शब्द क्यों लगाया? जरूर कोई बच्चे हैं जिनको ये निश्चय नहीं बैठता कि हमें बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। जब निश्चय नहीं बैठता है तो देहधारियों में अटकते हैं। वहां स्वर्ग में तो रावण होगा ही नहीं, माना अनेक मतों का संगठित रूप वहां नहीं होगा। तो स्वर्ग जो रचना है वो जरूर एक की रचना है। रावण का राज्य अलग है, राम का राज्य अलग है। शास्त्रों में क्या क्या बैठ करके लिख दिए है। कहते हैं रावण ने सीता चुराई, राम ने बंदर सेना ली, आधा कल्प रावण को लगा है चुराते चुराते। क्या कहा? आखिरी ने सबको चुराई लिया। किसको चुराया? सभी सीताओं को रावण ने चुराई लिया और सात सीताओं को शोक वाटिका में डाल दिया। तुम बच्चे अभी समझते हो कि रामायण भागवत आदि में सब इस समय की बात है। बुढ़ियों का खेल है। महिमा कितनी करते हैं, बाप समझाते हैं इस समय सारा धार तमो प्रधान खत्म होने का, तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। समझाने के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं, समझेंगे फिर भी कोर्ट अनुकूल। सैंपलिंग लग रहा है, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो सब निकल आएंगे। कौन समझेंगे, कोर्टों में कोई कोर्ट मान करोड़ करोड़ों को संदेश मिलता है, लेकिन उनमें समझेंगे कितने। कोई कोई सब नहीं समझेंगे, और वो समझेंगे जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए थे पूर्व जन्मों में। तो जो कन्वर्ट हो गए थे वही अभी आकर के ब्राह्मण बने। ब्राह्मण कोई एक प्रकार के नहीं होते हैं, ब्राह्मणों की भी भक्ति मार्ग में और शास्त्रों में नौ कुरियां बताई गई, नौ ही मुख्य धर्म हैं जो परमात्मा बाप से वर्षा पाते हैं। नंबर वार पुरुषाश्रम का, तो जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो सब निकल रहे हैं। तो कौन कन्वर्ट हो गए हैं, ब्राह्मण ही मुखवंशावली बनते, ब्राह्मण ही मुखवंशावली बनते। हिंदू वास्तव में है अकुल देवी देवता धर्म की, हिंदू मन जो अपन को समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले, हिंद माने हिंसा, दू माना दुईते दूर करना। समझाना है तुम भारतवासी देवी देवता नस्ल के, देवी देवताओं को ही पूजते हो और देवता ही तुम्हारा धर्म है। पहले तुम देवता थे, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर तुम ब्राह्मण बन देवता बन। हम समझाएंगे ही भारतवासियों को जो टोटल विदेशी हैं, वो विदेशी हमारी बातों को नहीं समझेंगे।